विश्व दर्पण। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की दयनीय स्थिति की चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहें। म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों पर इस देश की सेना, पुलिस और चरमपंथी बौद्धों के हमले निरंतर जारी हैं। आज के कार्यक्रम में हम इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति पर गहरी चिंता जताए जाने और इस समस्या के समाधान के लिए मुस्लिम देशों की ओर से व्यवहारिक कदम उठाए जाने की मांग की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उनके बयान की रोशनी में किस प्रकार रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। पिछले सप्ताह आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने धार्मिक शिक्षा की अपनी क्लास में रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की सेना, पुलिस और चरमपंथी बौद्धों के हमलों की कड़ी निंदा की।
جلو به چشم کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، جلو به چشم 1.5 میلیارد مسلمان، جلو به چشم مجامع جهانی مدعی و دولتهای ریاکار دروغگوی
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस्लामी देशों और इस्लामी सरकारों की आंखों के सामने, 1.5 अरब मुसलमानों की आंखों के सामने, मानवाधिकार की दावेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और दिखावा करने वाली झूठी सरकारों की आंखों के सामने एक निर्दयी सरकार, जिसमें सबसे ऊपर एक ऐसी निर्दयी औरत है जिसे शांति का नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है, कुछ बेसहारा लोगों का जनसंहार कर रही है, आग लगा रही है और उनके घरों को तबाह कर रही है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने अपने इस बयान में रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंहार रोकने का रास्ता भी बताया।
راه چاره این است که دولت‌های مسلمان عملاً وارد بشن. نمیگیم لشکرکشی کنن به اونجا، اما فشار سیاسی بیارن، فشار اقتصادی بیارن. ده‌ها کشور مسلمان و دولت مسلمان هستند. ممکنه بعضی از اینها ارتباطات تجاری داشته باشن، ارتباطات اقتصادی داشته باشن.
उन्होंने कहा कि समस्या को हल करने का रास्ता यह है कि मुस्लिम सरकारें व्यवहारिक कदम उठाएं। हम ये नहीं कहते कि वहां सैन्य कार्रवाई करें, लेकिन राजनीतिक दबाव डालें, आर्थिक दबाव डालें। दसियों इस्लामी देश व सरकारें हैं, जिनमें से कई के संभव है कि राजनीतिक संबंध हों, व्यापारिक संबंध हों, उस माध्यम से उस सरकार पर दबाव डालें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वरना हम अगर एक कोने में बैठकर आलोचना करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी बहुत कष्ट किया और आलोचना की, इस प्रकार की आलोचना का क्या फायदा है। लंदन में रह रहे प्रख्यात टीकाकार मुश्ताक लाशारी कहते हैं कि इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का बयान आंखें खोल देने वाला है।
मैं समझता हूँ कि ईरान के लीडर का जो ये बयान है और ये बयानिया है, बल्कि ये हम मुसलमानों के लिए आई ओपनर है। हमें चाहिए कि हम जहाँ पे भी बसते हैं, मुसलमान हैं, बल्कि ह्यूमन राइट के जो पासदार हैं, वो अगर मुसलमान नहीं भी, जैसे दलाई लामा है, पोप है, यूनाइटेड नेशन है, हम जहाँ पर भी बसते हैं, हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और एक मुतहदा आवाज़। चूँकि आज अगर ये मुसलमानों में म्यांमार में हो रहा है, तो कल ये दूसरी जगह पर होगा। ये एक इब्तदा है जो बोस्निया में हो चुकी है, इसके अलावा कोसोवो में हो चुकी है, अब यह म्यांमार में हो रही है और कल को ये मेरे घर तक भी पहुंच सकती है। ईरान इसमें एक लीड रोल प्ले कर रहा है। मैं समझता हूं कि टर्किश गवर्नमेंट का भी इसमें रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है।
हमने भारत के प्रख्यात टीकाकार शकील शमसी से पूछा कि इस्लामी सरकारें रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंहार रोकने के लिए किस प्रकार के कदम उठा सकती हैं, तो उन्होंने कहा,
सबसे बड़ा कदम ये उठा सकते हैं कि वो लोग कानून में पैदा हैं, बात करें वहाँ पर कहीं प्रशासन में बात करें कि सारी जो वहाँ पर शांति सेना भेजी जाए, जिस प्रकार से और देना जाती रही है सेना, क्योंकि उसका कोई और हल नहीं है। और वहाँ पर वो लोग जो म्यांमार की सेना है, वो किसी भी सूरत में इन लोगों को वहाँ रहने देना नहीं चाहती है। चाहते कि पूरा रसायन का जो इलाका है वो खाली हो जाए और ये लोग भारत के दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। उनकी पूरी बहुत बड़ी कोशिश है। आप जानते हैं कि उन लोगों ने जितने भी इनके नागरिक के हक हैं, नागरिक अधिकार हैं, सब छीन लिए हैं वहाँ के पास लोगों को परेशान करते हैं, तरह तरह से ना उनको काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरियां हैं, ना अपनी जॉब कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है जब तक कि वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना जाकर और उस जगह को सिक्योर करे और वहाँ से उन लोगों को उनमें जो दर्द है पैदा उसको दूर करे। तो इसमें मुस्लिम जितनी भी देश है, मुस्लिम देश मिलकर अगर चाहेंगे और आवाज उठाएं वहाँ पर जीवन में तो इसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी तक जो हो रहा है वो ये कि ज्यादातर उनकी आर्थिक तौर पर अगर कह रहा है तो क्या कर रहा है, हम पैसे भेज देंगे तो कह रहा है, तो वो बांग्लादेश में उनके लिए कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, वो सब बहुत आगे भी जरूरी चीजें हैं, वो सब करें और उनको आर्थिक और जो दूसरी सहायता है वो पहुंचाई जाए। लेकिन इसके साथ साथ जब तक की मुसलमान पूरी तरीके से दबाव नहीं डालेंगे और दबाव डालने का माध्यम जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है।
पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार डॉक्टर किंदिल अब्बास भी कहते हैं कि इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने व्यवहारिक कदम का जो प्रस्ताव दिया है वो बहुत अच्छा है और केवल इस्लामी जगत को ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय को भी रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंहार रोकने के लिए म्यांमार की सरकार पर दबाव डालना चाहिए।
मेरा ख्याल है बड़ी एक शानदार और बड़ी मौसर तजवीज है कि वो OIC के लेवल पर हो या कुछ मुसलमान मुल्क आपस में मिलकर कोई मैकेनिज्म बना लें कि एक तो खुद म्यांमार की हुकूमत चूंकि इस जुर्म में बराबर की शरीक है और सरकारी सतह पर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद की सरपरस्ती भी की जा रही है और हमायत भी की जा रही है और इसके एविडेंसेस भी सामने आ चुके हैं, तो जरूरी है कि खुद म्यांमार की हुकूमत का सियासी बायकॉट किया जाए या उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो डिप्लोमेटिक एक प्रेशर बनता है वो डाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ साथ ये तो जुल्म रोकने के लिए एक इकदाम हो सकता है, लेकिन जैसा कि राबर इंकलाब ने भी कहा कि दूसरी तरफ खुद मुसलमानों के लिए ऐसी इमदादी पैकेज सामने आने चाहिए और ऐसे इकदाम सामने आने चाहिए कि वहां पर अब मेडिकल की सहूलतें नहीं है, लोग पूरे पूरे गांव जला दिए गए और खुले आसमान के नीचे लोग गर्मी और बारिश और सर्दी के माहौल को फेस कर रहे हैं और उनको उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है और फौरी इकदाम की जरूरत है। वैसे तो आलमी अदारे जो है यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को है और बाकी अदारे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इकदाम करें, लेकिन मुस्लिम उम्मा का एक इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए फौरी तौर पर कोई इकदाम करें। मेरा ख्याल है कि ये जो रबर इनकलाब की तजवीज है इस पर एक कमेटी बननी चाहिए आलमी सतह पर जो मुसलमानों की भी हो और उसमें आलमी अदारे भी शामिल हों ताकि जो मजलूम मुसलमान है फौरी तौर पर उनकी मदद की जा सके।
दुनिया भर में मुसलमानों की समस्याओं को हल करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने में ईरान हमेशा आगे रहा है। शकील शमसी कहते हैं कि इस समय भी दुनिया भर के मुसलमान ईरान की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।
अच्छी बात यह कि सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो ईरान की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। ईरान की भूमिका यहाँ पर इसलिए अधिक अहम हो गई है कि जो ईरान के ऊपर पिछले दिनों अमरीकियों ने और जो सऊदियों ने ईरान लगाए तरह तरह के और जो जिस प्रकार से मुसलमानों के विभाजन को लेकर उन्होंने बात की वो दूर हो गया है इस बार। इसलिए रोहिंग्या के मामले में जितना एक्टिव होकर ईरानियों ने सपोर्ट किया है उसकी वजह से सार्वजनिक मुसलमान घर के साथ ईरान की ओर देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और इसको ईरानियों को और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करना होगा कि जहां जहां मुसलमानों की बात है हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। देखिए और वरना तो ये लोग तो आप यमन में देखिए किस तरीके से खानदारी कर रहे हैं और चाहे कि खाली वहां पर मुसलमान ही थे, मुसलमानों को बचाने का सवाल नहीं था, मुसलमानों ही को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जहां पर मुसलमानों को बचाने की बात होती है वहां के ऊपर चूंकि मुस्लिम मुल्क हैं वो शांत होकर बैठ जाते हैं और शांति की बातें करने लगते हैं और न वो अमरीका का कुछ कहते हैं न वो बरतानिया का कुछ कहते हैं, वो अपनी जगह बैठ जाते हैं। तो अगर ईरान और तुर्की दोनों मिलकर अगर चाहें तो पूरा परिदृश्य बदल सकते हैं वहां का और पूरी जो विश्व के मुसलमान हैं वो बहुत निगाहों के साथ बहुत खास निगाहों के साथ इन दोनों देशों की तरफ देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे जिस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, जिस प्रकार के तारीखें हो रही हैं सरकारी के लिए, तो उसकी वजह से ये लगता है कि रोहिंग्या की वजह से मुसलमानों में एक एकता का बहुत बड़ा मास प्रशस्त होने वाला है और सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो रोहिंग्याओं के लिए जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार मुसलमानों ने अपने वर्गीय विभाजन को सबको भुला दिया है और वो चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की फलाह की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो।
قندیل عباس کہتے ہیں کہ ایران نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کی ہر اہم سمسیا کو وشو منچ پر اٹھایا ہے، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، عراق کی سمسیا ہو یا انیہ دیشوں کے سنکٹوں کی بات ہو۔ لیکن انیہ مسلم دیشوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں ایران کا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ یہ کسی ایک دیش کا کام نہیں ہے بلکہ پورے اسلامی جگت کا معاملہ ہے۔
جب فلسطین کے ایشوز کو ہم دیکھیں، عراق دیکھیں، افغانستان دیکھیں، تو جو ایران کی فارن پالیسی کے بیسک پرنسپلز ہیں یا ایران کا کانسٹیٹیوشن جہاں تک میری نالج ہے، اس میں جو ایران کی فارن پالیسی کی پرائیورٹیز ہیں، اس میں ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں ہیں ان کی فلاح و بہبود، یا ان کے اگر ظلم کا شکار ہیں تو ظلم کے خلاف ایران آواز اٹھائے گا۔ یہ ایک ایران اپنی قانونی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی، وہ افریقہ کے اندر ہو یا سینٹرل ایشیا میں بھی ہم نے دیکھا، پھر فلسطین کے اندر ہم نے دیکھا، پھر شام کے اندر، جو یعنی دنیا میں جہاں جہاں کرائسز نظر آ رہے ہیں وہاں پر ایران کے اقدامات آئے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ایران کے ان اقدامات کا عالمی برادری بھی اور خود مسلم امہ بھی ساتھ دے، کیونکہ یہ کسی ایک ملک کا کام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ایران کو بھی اپنی ایک ایسی ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے جس میں جو باقی اہم اسلامی ممالک اس کوشش میں وہ شریک ہو سکیں، لیکن ایران کا جو لیڈنگ رول ہے میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے۔
بہرحال میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی استھتی اتینت دکھد ہے، لیکن اس سے بھی دکھد اس سمبندھ میں مسلمان دیشوں کا رویہ ہے۔ ایران اور ترکی جیسے ایک آدھ دیشوں کو چھوڑ کر کوئی بھی مسلم دیش ان بے سہارا اور اتیاچار گرست لوگوں کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ ایران روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے اب تک مانوتا پریمی سہایتاؤں کی دو بڑی کھیپیں بھیج چکا ہے، اور اس نے روہنگیا کھیتروں میں موبائل اسپتال کھولنے کے لیے بھی اپنی تیاری کی گھوشنا کی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے وشو منچ پر بھی اس معاملے میں آواز اٹھائی ہے۔ اگر اسلامی کرانتی کے ورش نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے پرستاؤ کو مان کر صرف مسلم دیش ہی مل کر میانمار پر آرتھک اور راجنیتک دباؤ ڈالیں، تو اگلے ہی دن میانمار کی سرکار روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری امانوی اپرادھوں کو روکنے پر وشوش ہو جائے گی۔